नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नेहा गोस्वामी। राज्यसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में और संशोधन करेगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत IIM गुवाहाटी को 555 करोड़ रुपए का कोष मिलेगा।
देशवासियों को, विशेष करके आसाम वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसी एकेडमिक ईयर में IIM गुवाहाटी में स्टूडेंट की एडमिशन होगी, प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी और पढ़ाई भी शुरू किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया।
स्पीकर सर, rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration.
इस विधेयक का उद्देश्य खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं, विज्ञापन और उनसे जुड़े वित्तीय लेन देन पर रोक लगाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस विधेयक में पैसा लेकर ऑनलाइन खेलों की पेशकश करने, संचालन करने या प्रोत्साहन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। कानून के उल्लंघन पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यह विधेयक वित्तीय प्रणाली की अखंडता और देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करेगा। यह जनहित में एक समान और राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। यह विधेयक देश के युवाओं को ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्स जैसे कि पोकर और रमी जैसे प्रलोभन वाले गेम से बचाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य 2019 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित करना है। श्री शाह ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक भी पेश किया।
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तीसरे स्थगन के बाद दोपहर 3 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदर्शनकारी सांसदों के आचरण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनका व्यवहार संसदीय मानदंडों और मर्यादा के विरुद्ध है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित NDA गठबंधन के कई नेता उपस्थित थे। नामांकन दाखिल करने से पहले CP राधाकृष्णन ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितम्बर को होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज व्यापार, आर्थिक कार्य, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी भारत रूस आयोग की 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। वे मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगे। डॉ जयशंकर कल रूस की 3 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंचे। भारत ने पेरू को 32 टन मानवीय सहायता की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 2,50,000 यूनिट फिजियोलॉजिकल सलाइन सॉल्यूशन की यह खेप पेरू में निर्जलीकरण से पीड़ित रोगियों की सहायता करेगी। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। खराब मौसम के कारण राज्य के कई जिलों में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। बांधों का जलस्तर बढ़ने से नियमित रूप से पानी छोड़ा जा रहा है। 134वें डुरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में आज कोलकाता में ईस्ट बंगाल का सामना डायमंड हार्बर FC से होगा। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।